परम आदरणीय परम अध्यक्ष आदरणीय राजू भाई जी जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ इस भट्टी के अंतर्गत, तो ऐसे हमारे आदरणीय राजू भाई जी जिनका हम परिचय देते। तो आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ है। सन 1960 से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के गतिविधियों को आपके ही लौकिक घर से शुरू की है तथा बचपन से योगी जीवन जीने का संकल्प लिया है। तो आप 1972 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू समर्पित रूप से विभिन्न डिपार्टमेंट में अथक सेवाएं देते रहे। तो आप अव्यक्त बापदादा के सम्मुख मुरली श्रवण के साथ टाइप करके विश्व के कोने कोने में तथा तत्काल सारे विश्व में पहुंचाने का आपका विशेष योगदान है। तो आप मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट भी संभालते हैं और विशेष आप दादी जानकी जी के द्वारा मुख्यालय से जो प्रतिमा स्व उन्नति के हेतु पत्र पुष्प निकलता है जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे परमात्म प्रेरणाएं दादी जी की प्रेरणाएं अथवा देश विदेश में चल रही विशेष सेवाएं का समाचार देते वह आप प्रकाशित करते रहते हैं। तो इन सब सेवाओं के साथ साथ मुख्यालय से दादी जी की तरफ से पत्र व्यवहार करने का कार्य भी आप करते हैं। ऐसे विश्व के कई देशों में आपने सेवा अर्थ भ्रमण किया है। ऐसे हमारे राजू भाई जी हमारी इस ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगे और हम एक हाथ से उनका तालियों से स्वागत करेंगे। ओम
शांति। बाबा के इस बेहद घर में तपस्या करने का अपना ही अनुभव है, लग रहा है ना। तपस्या के स्थान पर जहाँ स्वयं आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने, जगदम्बा मीठी माँ ने, हमारी आदरणीय दीदियों ने, दादियों ने सतत तपस्या की, ऐसे तपस्या के स्थान पर बाबा की इस चरित्र भूमि में जहाँ उनके कण कण में बाबा की यादें समाई हैं, ऐसे स्थान पर आते ही योग सहज लग जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा है ना। क्या अनुभव कर रहे हैं सभी? ऐसा गोल्डन चांस आप सबको मिला है और इस चांस के आधार से अपनी अवस्था को एक रस अचल अडोल स्थिर बना करके जाएंगे, ऐसा ना। क्योंकि जब कोई सत्य मार्ग पर चलता है, कोई अच्छे श्रेष्ठ संकल्प करता है, तो उसके पीछे परीक्षाएं भी नए नए ढंग से मायावार करती है। अभी अभी कोई संकल्प करो, अभी अभी पेपर आ जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चों की अवस्था जो है इतनी मजबूत होनी चाहिए, अचल होनी चाहिए, कितनी भी हिलाने वाली बातें आए, कितने भी माया के आंधी तूफान आए, लेकिन जरा भी पांव का अंगूठा भी हिला न सके, ऐसी मजबूत स्वयं की स्थिति बन जाए। क्या करेंगे उसके लिए? बाबा कहता है बच्चे, जिस दिन से आपने सत्य मार्ग को अपनाया, जिस दिन से आपको ये ज्ञान और योग की पढ़ाई मिली, उस दिन से ही नए नए प्रकार की परीक्षाएं बातें हरेक के सामने आती हैं। कोई तो उसको बहुत सहज रीति से पार कर लेते हैं और कोई उसमें मूंझ जाते, घबरा जाते, क्या क्यों के प्रश्नों में चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम सबका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, और फाउंडेशन मजबूत करने के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें समय प्रसमय हम सबको सिखाई हैं। एक तो बाबा कहते हैं श्रीमत सिरमाथे, बाबा की मुरली में रोज बाबा की श्रीमत हम सब सुनते हैं। जो श्रीमत के अनुकूल हर कर्म करते, संकल्प बोल और कर्म में आते हैं, परमत और मनमत से मुक्त रहते हैं, उनका फाउंडेशन अपने आप मजबूत हो जाता है। क्योंकि कई बातें जो मनमत में चलती हैं, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं ऐसा न हो जाए ऐसा न हो जाए, या कोई बहका देता है, परमत का प्रभाव डाल देता है, तो हमारा मन की स्थिति का फाउंडेशन हिलने लगता है। इसलिए सबसे पहले तो बाबा की मुरली जो हम सब के लिए श्रेष्ठ मत है, उस पर बहुत ध्यान चाहिए, अटेंशन चाहिए, ध्यान से इसको पढ़ें, सुने, मनन करें, चिंतन करें, ताकि हमारा फाउंडेशन मजबूत हो जाए। और साथ साथ जो बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है, उस दिनचर्या को बहुत रेगुलर और पंचुअल रूप से फॉलो किया जाए। कि कई ब्राह्मण आत्माएं इसमें अलबेली हो जाती है। पहले पहले उमंग उत्साह होता है, खूब अच्छी तरह से तीव्र पुरुषार्थ की रेस करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं, चलते चलते एक दूसरे की कमी कमजोरी, ये ऐसे करता ये भी ऐसे करता देखने लगते हैं, तो जो हमारी दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा ढीलापन आ जाता, अलबेलापन आ जाता है। इतनी अच्छी एक्यूरेट दिनचर्या ब्राह्मणों को बाबा ने बना के दी है, अमृत वेले से रात तक। अगर सचमुच उस दिनचर्या के अनुकूल आप चलते चलो, आपका फाउंडेशन अपने आप में मजबूत हो जाएगा, कोई हिला नहीं पाएगा। अगर पक्के हैं तो माया और प्रकृति जो पहला पेपर लेती है, हमने देखा है जो बहुत पक्के होते, चाहे जितनी बरसात पड़े, ठंडी पड़े, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन अपनी टाइम टेबल में बहुत पक्के रहते, कुछ भी हो जाए मुझे अमृत वेला करना है, मुझे मुरली क्लास में पहुंचना है, समय पर जाना है, तो सब पेपर को क्रॉस करके वो आ जाते हैं। तो सबको पता है कि दिनचर्या क्या बनाई है बाबा ने, अमृत वेले 3:30 से लेकर के रात को सोने से 10 बजे तक। सवेरे सवेरे हम बाबा से गुड मॉर्निंग करते, वो हमारी दिनचर्या के अंदर फिक्स है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1.5 घंटा तो अच्छा योग किया जाए, 4 से 4:45 तक। और उसके बाद मुरली क्लास आता है, मनन करते, चिंतन करते, स्नान पानी करते, वो अलग चीज है, लेकिन मुरली क्लास में भी अगर हम रेगुलर पंचुअल अपनी दिनचर्या के अनुसार रहते हैं, तो उसकी भी मार्क्स होती हैं कि बहुत पक्के हैं, अपने नियम पर दृढ़ हैं। फिर भोजन के लिए भी है, कर्म के लिए भी है, सैर के लिए भी है, अपने व्यवहारिक जीवन को निभाने के लिए भी श्रीमत मिली हुई है, और उसके अनुसार अगर हमारी दिनचर्या चलती है, तो दिनचर्या के अंदर एक्यूरेट चलने वाले अपने अंदर के फाउंडेशन को पक्का कर लेते हैं। कुछ भी हो जाता, हिलते डुलते नहीं है, कोई कुछ भी कहे, मुझे तो ये नियम पालन करने हैं। एक ब्राह्मणों के अंदर जो थोड़ी हलचल होती है, वो होती है कई बार हमारे रिगार्ड देने का जो रिकॉर्ड है वो खराब हो जाता। वो बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है कि ये रिकॉर्ड है हमारा, और ये रिकॉर्ड रिगार्ड देने का, एक दूसरे को सम्मान देने का, वो खराब ना हो, वो सदा अच्छा रहे, ताकि सबके साथ संबंध अच्छे बने रहें। नहीं संबंध नहीं मिलते तो सहयोग नहीं मिल पाता। अगर संबंधों में थोड़ा भी नीचे ऊपर व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे का कभी भी अपमान कर दिया, डिसरिगार्ड हो गया, कोई ने महसूस कर लिया, तो उसके बाद सहयोग मिलना बंद हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखे। आजकल तो पहले जमाने में कहावत थी कि छोटों को प्यार दो, बड़ों को रिकॉर्ड दो, लेकिन समय बदल गया, अभी सबको रिकॉर्ड चाहिए। सम्मान से बात करे, कम से कम ठीक तरह से बोले। तो सबसे अच्छा फाउंडेशन का एक तरीका है, कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। अगर हम अपने आप को सचमुच मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक लक्ष्य रखो, मुझे अपने आप को अच्छे अच्छे विचार दे करके, अच्छा चिंतन दे करके खुद को खुद मजबूत करना है। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। जितना जो आत्माएं स्वचिंतन करती हैं, अपने आप से बातें करती हैं, बाबा ने मुझे क्यों चुना है, क्यों अपना बनाया है, कहाँ से निकाला है, क्या क्या दिया है, अगर इनका थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं तो एक नशा चढ़ जाता है। और उस नशे के आधार से कोई छोटी मोटी बातें कहता भी है, होते भी हैं, तो सहज पार कर लेते हैं। इसलिए स्वचिंतन स्वउन्नति के लिए बहुत जरूरी है, और समय निकाल करके अपने आप से बातें करने का, अपने नशे में रहने का अभ्यास करना चाहिए। साथ साथ आप देखेंगे कई बार छोटी सी बात कोई सुन लेते हैं तो उसके विस्तार में चले जाते हैं, सार कुछ नहीं निकलता, बड़ा विस्तार कर लेते, और वो विस्तार आत्मा को मुझा देता है, उलझा देता है कई प्रश्नों में। इसलिए कोई भी बात सुनते हैं, देखते हैं, तो ध्यान रखना मुझे विस्तार में नहीं जाना, उसके सार को समझना है, उसमें क्या छिपा हुआ राज है उसको समझ करके अपने को सेफ रखना है। अगर विस्तार में जाएंगे तो बहुत सा समय और शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो फाउंडेशन को मजबूत करना है। फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी बातें हैं। कई बार छोटी बातों पर ध्यान नहीं रहता और हम बड़े बड़े पुरुषार्थ में लग जाते, फिर कोई ऐसी बात बनती है संगठन के बीच में चलते चलते, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं और स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है जो एक दूसरे को देखना, उनसे बोलना, उनसे मिलना, कई बार तो बाबा की मुरली से, परिवार से, ब्रह्मा भोजन से, संगठन से भी किनारा हो जाता। और आप जानते हैं कभी भी कोई दुश्मन किसी पर अगर अटैक करना चाहता है तो उसके साधन काटता है पहले, जहां से उसको सहयोग मिलने वाला होता ना, वो काट देता है ताकि वो अकेला पड़ जाए, फिर उस पर अटैक किया जाए। कोई देश पर भी अगर कोई चढ़ाई करता है तो पहले देखता है इसके मोटर गाड़ी आने के साधन, रोड्स उनको तोड़ दो, पुल तोड़ दो, बिजली के खंभे तोड़ दो, टेलीफोन की लाइनें काट दो, जब सब पहले से बाहर के सप्लाई के साधन कट जाते हैं उसके बाद वो अकेला पड़ जाता, फिर वार करते हैं, दुश्मन पचाई करते हैं। तो परमात्मा भी हम सबको ये साधन बताते हैं, ये सब तुम्हारे जो साधन हैं, ब्राह्मण परिवार है, मधुबन है, यज्ञ है, सेवाएं हैं, जितनी भी आत्माएं हम सबको सहयोग दे रही हैं समय पर समय आगे बढ़ाने में, अगर ये नहीं अच्छी लग रही, उनसे हम किनारा कर रहे हैं, तो समझो ये माया हमारी सप्लाई लाइन को पहले कट कर रही है, कहीं ना कहीं अटैक करेगी। इसलिए हमारे पिलर्स जो मजबूत हों तो माया कुछ भी करे, कैसे भी आए, हम पास हो जाएंगे। मैंने तो अपने जीवन में चार बातों पर बहुत अटेंशन रखा है। अगर आप सभी उन चारों बातों को अंडरलाइन कर लें, परीक्षाएं तो किसके आगे नहीं आती। कोई पुराने हिसाब किताब हैं, संस्कार स्वभाव हैं, कई प्रकार की रही हुई बातें जो सामने अचानक आ जाती हैं, माया के भिन्न भिन्न रूप हैं जो रूप बदल बदल करके आते हैं, काम वासना को ब्रह्मचर्य के रूप में हमने पालन कर लिया है, दृढ़ता से अपना रहे हैं, लेकिन दृष्टि वृत्ति की चंचलता है, सपनों में अशुद्धि है, बहुत सारी बातें मन के अंदर मन को परेशान करती रहती हैं, वार करती रहती हैं, स्थिति को, हमारी खुशी को गायब कर देती हैं। सबसे अच्छी बात है अगर सचमुच हम अपनी स्थिति को एक रस रखना चाहते हैं तो संकल्प शक्ति पर बहुत अटेंशन का पहरा दें। संकल्प एक बहुत बड़ी हमारे पास शक्ति है, हर एक आत्मा के पास है, और पहला अटैक माया का संकल्प पर ही होता है, उसके व्यर्थ संकल्प चले, नेगेटिव संकल्प चले, इधर उधर की बातें मन में घुसे और उसके बाद उसकी खुशी गायब हो जाए, उमंग उत्साह खत्म हो जाए। जिसकी खुशी और उमंग उत्साह खत्म हो गया उसके लिए सब भारी लगेगा, भारी भारी, वातावरण भारी है, संग अच्छा नहीं लगता है, ब्रह्मा भोजन अच्छा नहीं लगता, ये बहने ऐसे करती, ये भाई ऐसे करते, यहाँ ऐसे होता, प्रपंच का दरवाजा खुल जाता। इसलिए सदा एक बात का शुरू से अटेंशन मैंने जो रखा कि मेरे संकल्पों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति, खजाना हम सबके पास है, इसको जितने अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्प हम देते रहें, अच्छे विचार देते रहें, अगर कोई परीक्षा भी आ गई तो भी समझे इसमें भी कुछ भला है, कुछ कल्याण है, कुछ अगर इसने ऐसा कहा है तो हो सकता है इससे मेरा और कुछ नया रास्ता, नई उन्नति खुलने वाली हो, नई उन्नति होने वाली हो। तुरंत क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, इसने ऐसे क्यों बोला, मन को उलझाओ नहीं। बहुत जल्दी उलझ जाता और उलझने के बाद एक क्यों लग जाती है व्यर्थ संकल्पों की, एक के बाद दूसरा संकल्प उठने लगता। और जैसे बाबा कई बार एक मिसाल देते हैं, बट वृक्ष होता है जंगल में, जो बांस होते हैं जंगल का, जो बांसों का जंगल, जब वो आपस में टकरा जाते हैं तो पूरे जंगल को जला देते, पूरे जंगल में आग लग जाती। ऐसे ही अंदर ही अंदर अगर संकल्पों में युद्ध चलती है और व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, तो जैसे वो एक जंगल के अंदर हम अपने आप में आग पैदा कर देते, खुशी गायब हो जाती, ब्राह्मण परिवार अच्छा नहीं लगता, संग अच्छा नहीं लगता, मुरली अच्छी नहीं लगती। इसलिए बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, संकल्प एक इतनी श्रेष्ठ शक्ति है, इसको जिधर मोड़ना चाहो मोड़ सकता है, लेकिन आत्मा मालिक बन करके इस पर राज्य करना सीख जाए, नहीं तो मन और कर्म इंद्रियों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई है, जो उसके संकल्प उठते हैं कर्म इंद्रियां वैसे ही करना शुरू कर देती है। संकल्पों को एक अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन देने की आदत डालो और सवेरे सवेरे का समय जो है लक्ष्य रखो, 4 से 8 बजे कम से कम ये 4 घंटा मुझे कोई आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, संबंध संपर्क, कोई ऐसे बिजनेस होते हैं, ऐसी कोई कारोबार होती है, शायद कोई कोई जो उसमें बिजी होना पड़े, लेकिन अगर 4 से 8 बजे केवल मुझे बाबा से सुनना है, बाबा से बातें करनी है, बाबा से शक्ति लेनी है, और ये फाउंडेशन का समय सारे दिन के लिए अगर हम अपने आप को शुद्ध संकल्पों के खजाने से भरपूर कर लें, तो मैं समझता हूँ सारे दिन में कितनी भी परीक्षाएं आए हिला नहीं पाएंगे, मजबूत है फाउंडेशन। और वो फाउंडेशन ज्ञान योग का अगर अंदर अंदर चिंतन किया है श्रेष्ठ संकल्पों का, तो एक संकल्प शक्ति पर बहुत अटेंशन चाहिए। संकल्पों में अगर ऐसे साधारण संकल्प भी चलने लगते हैं कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा, क्योंकि समाचार तो लोग आजकल बहुत सारे साधन पहुंचाने के फटाफट आज क्या क्या व्हाट्सएप पर भेज देते, कितनी उल्टी उल्टी न्यूज़ें भेज देते, कहाँ क्या हुआ फट से इधर से उधर कान तक पहुंच जाती बातें, हुआ या नहीं हुआ उसका इंक्वायरी भी नहीं करते, कई तो मान बैठते और उसी अनुसार दृष्टिकोण बना लेते, संकल्प चलने लगते, दृष्टिकोण बन जाता, भावनाएं बदल जाती और बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते। इसलिए आवश्यक है इन साइंस के साधनों का सही दिशा में प्रयोग किया जाए, नहीं तो व्यर्थ संकल्पों की बहुत लंबी क्यू लग जाएगी। जरूरी है उतना यूज करो, लेकिन अधिक इसके पीछे न समय दो, समय एक बहुत बड़ी संपत्ति है, संकल्प के बाद समय संपत्ति को पहचानो, संगम का समय बड़ा अमूल्य है, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, कईयों के हाथ में अगर ये आ जाता, आजकल बात नहीं करते लोग एक दूसरे से ज्यादा, यही मोबाइल को ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे देखते रहते, पढ़ते रहते, क्या संकल्प समय और सफल होगा उनका। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि समय की एक एक घड़ी संगम की सफल हो, और सफल करने का तरीका तो बाबा ने अच्छा बताया है, बताया है ना सफल कैसे करना होता है। अगर हम संकल्पों में एक बाबा का ही ज्ञान का चिंतन करते हैं, रूह रियान करते हैं, बाबा की बातों पर विचार सागर मंथन करते हैं, समय सफल हो जाता है। जो समय बचता है सेवाओं में समय जा रहा है, किसी को ज्ञान सुनाने में जा रहा है, कोई कर्मणा सेवा में जा रहा है, उस समय भी संकल्प को हम मोड़ सकते हैं। कई ऐसे कार्य होते हैं जो उसमें ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं पड़ती, हाथों से काम कर रहे हैं, बाबा की याद दिल में बनी हुई है, लेकिन कई ऐसे बुद्धि के काम होते हैं जिसमें थोड़ा बुद्धि को ज्यादा लगाना पड़ता है। फिर भी बुद्धि कई बार एक साथ कई काम करती है, थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो हमारा समय निष्फल न जाए, इसकी कदर करें। संगम का समय कितनी बड़ी कमाई का समय है। 21 जन्म तो क्या बाबा कहता, तुम्हारा 84 जन्मों का रिकॉर्ड नूंधने का ये संगम है। और 84 जन्मों का जब रिकॉर्ड नूंधा जा रहा है, वैसे भी जब रिकॉर्डिंग करते हैं कोई चीज, मैं देखता हूँ, मैं गाडली स्टूडियो में कभी कभी रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ, अगर एक शब्द भी कोई नीचे ऊपर हो गया, फिर से 10 मिनट की बात फिर से रिपीट करो, फिर से जो रिकॉर्ड हुआ वो कहेंगे रोक दो, फिर से रिपीट करो। 25 मिनट की शूटिंग कम से कम 1-1.5 घंटा ले जाते, कितना रिकॉर्डिंग पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो सदा के लिए सबके लिए बन जाता है। ऐसे ही जब हमारा 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरने का समय चल रहा है, संगम युग है, तो फिर हमारा संकल्प, हमारा समय, हमारी श्वास कैसी होनी चाहिए, थोड़ा इस पर अटेंशन देंगे तो मैं समझता हूँ जरा छोटी छोटी बातें हिलाएंगी नहीं, हलचल में नहीं लाएंगी, क्योंकि समय इधर उधर गंवाने से शक्ति खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है। तीसरी बात है सेवा के महत्व को हम समझें। कई ब्राह्मण आत्माएं सेवा करती हैं, कहने से कर देती हैं, लेकिन संगम युग पर सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। स्थिति है उसके साथ साथ, स्थिति के बिना सेवा करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं निकलेगा, जमा नहीं होगा, लेकिन सेवा, यज्ञ सेवा जो संगम युग पर बाबा ने इतना बड़ा विश्व कल्याण का, विश्व परिवर्तन का यज्ञ रचा, इस यज्ञ के अंदर किस प्रकार से मुझ आत्मा का सहयोग है, तन से, मन से, धन से, जन से, अपनी विशेषताओं से, कहीं न कहीं सेवा में मेरी अंगुली लगनी चाहिए। अगर सेवा से कोई विमुख होकर के केवल मुरली सुने आकर के, योग करे आकर के, तो उसकी जो खुशी है, दुआएं हैं, जो बल है, वो नहीं प्राप्त होता। सेवा करते चलो, पुण्य कमाई, दुआओं की कमाई जमा करते चलो, वो समय पर साथ देती हैं, मदद करती हैं, कोई भी बातें आती हैं जल्दी हिलते नहीं, कहते हैं सबकी दुआएं साथ हैं। और सेवा शब्द जब आता है तो सेवा के साथ सुख दो सुख लो, न दुख देना न दुख लेना, सेवा शब्द ही है सुख देने का नाम। अगर कोई दूसरों को डिस्टर्ब करे, खुद डिस्टर्ब हो, तो उसको सेवा नहीं कहा जाता। इसलिए सेवा करो, खूब विस्तार करो, बाबा कह रहा है खूब फैलाओ, चारों तरफ संदेश दो, लेकिन जहां पर कोई ऐसे टकराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं, अंडरलाइन करो कि एक सेवा, हमने इतनी सेवाएं की, विस्तार किया, और थोड़ा सा आपस में ब्राह्मणों का मन मुटाव हुआ, डिस्टर्बेंस हुई, वो सारी सेवा को पानी फेर देता। इसलिए सेवाधारियों को एक लक्ष्य रखना है, हम सब बाबा की स्थापना की सेवा के कार्य के निमित्त हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, नव निर्माण का काम हो रहा है, उस निर्माण के कार्य में कोई भी हमारी एक्टिविटी, कोई भी हमारा ऐसा कर्म न हो जो रुकावट डाले, विघ्न रूप बने। तो जब इतना टेंशन रख करके हम सेवाएं करते हैं तो सेवा का बहुत बड़ा महत्व है इस संगम के समय में, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य परमात्मा को करना है। इतनी बड़ी दुनिया का परिवर्तन कोई साधारण बात नहीं है, और इतना गुप्त रीति से हो रहा है, लोगों को नहीं पता चलता कि एक नई दुनिया की नींव पड़ रही है, और नई दुनिया की नींव में ये सब अपनी अपनी अंगुली सहयोग की दे रहे हैं। तो जिस प्रकार की जो शक्तियां हैं, कहते हैं कल किसने देखा, जो है आज करके सफल करके तन की शक्ति है बाबा के काम में लग जाए। अगर आज मन अच्छा है, ज्यादा हलचल नहीं है, एकाग्र हो जाता है, मनमनाव हो जाता है, स्थिर है, तो बस मनसा सेवा करें, अभ्यास करें, दूसरों को शुभ भावना का सहयोग दें। अगर बाबा ने धन कुछ दिया है तो बाबा की अमानत लेके इधर उधर न जा करके नए विश्व के निर्माण के कार्य में लगे। अगर संबंध संपर्क अच्छे हैं, हम किसी से उमंग उत्साह दिला के कार्य करा सकते हैं, तो बाबा कहता है जन से सेवा करो, उनसे भी मदद कराओ बाबा के कार्य में। कोई अच्छी कला है, कोई अच्छी विशेषता है, उससे बाबा के कार्य को आगे बढ़ाओ। तो सेवा के महत्व को जान करके परमात्मा दुआओं को प्राप्त किया जा सकता है। परिवार की दुआएं उससे मिल जाती हैं और दुआओं का फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो छोटी छोटी पेपर, छोटी छोटी बातें जो भी पेपर के रूप में आती है, वो सहज पार हो जाते हैं। मैं आपको सात प्रकार की बातें सुनाता हूँ फाउंडेशन के अंदर। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना होता है उतना ही गहरा फाउंडेशन पड़ता है, और गहरे फाउंडेशन में भी मैं समझता हूँ उतना ही खर्चा वो करते हैं जितना ऊपर की बिल्डिंग में करना है। कितनी गहराई से खोदते हैं, फिर उसमें सरिया सीमेंट जो जरूरी चीजें होती हैं वो सब चीजें ठोक ठोक करके पक्की करते हैं, मजबूत करते हैं, फिर उसके ऊपर मंजिल खड़ी होती है। हम सब बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं, बहुत ऊंची मंजिल हमें प्राप्त करनी है, सदगति प्राप्त करना, ऊंचा पद प्राप्त करना, नरश्री नारायण समान बने, सर्व गुणों से सर्व कलाओं से संपन्न संपूर्ण बने, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा फाउंडेशन चाहिए। क्योंकि कई बातें आती हैं जो फाउंडेशन को हिलाती हैं, स्थिति को डगमग कर देती, अवस्था को खराब कर देती हैं। इसलिए पहला फाउंडेशन पक्का करें हम निश्चय का। कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के अंदर क्वेश्चन नहीं है, जहां निश्चय है वहां विजय तो निश्चित है ही है। अगर निश्चय के फाउंडेशन में कि बाबा के पार्ट में, स्वयं के पार्ट में, बाबा की पढ़ाई के ज्ञान के पार्ट में अगर जरा भी कोई क्वेश्चन मार्क आता है तो कभी भी कोई फाउंडेशन को हिला सकता है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना। साकार बाबा की कल की मुरली सुनी थी, मातेले और सौतेले का राज बाबा बता रहे थे। सौतेले बच्चों को निश्चय ही नहीं होता कि मुझे देवता बनना है, और जब तक ये निश्चय ही नहीं है तब तक वो पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत नहीं कर सकता। पहले निश्चय तो हो कि बाबा मुझे देवता बनाने के लिए आया है, सतयुग की रचना हो रही है, सतयुग की स्थापना के लिए इस पवित्रता के योग की सहयोग की जरूरत है। निश्चय नहीं है तो कितनी भी आप बातें सुनाओ, कितना भी ज्ञान सुनाओ, उसका ये फाउंडेशन सदा कच्चा ही रहता है। इसलिए पहला फाउंडेशन स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए, अवस्था को एक रस रखने के लिए आवश्यक है हम निश्चय बुद्धि विजयी बच्चे बन करके रहे। अपने में भी निश्चय हो कि मैंने कल्प विजय प्राप्त की है, विजयी बन जाएंगे, पता नहीं बनेंगे या नहीं, हम बने थे या नहीं बने, कई प्रकार के जो प्रश्न है वो हमारे संशय को पैदा करते हैं। इसलिए सदा एक बार बार रिवाइज करो, स्मृति में लाओ कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, बाबा ने हमें ही चुना है, हमें ही बनाया है और हमें ही बनना है। तो जब ये निश्चय पक्का हो जाता है तो फिर मंजिल सामने दिखाई देने लगती है। कोई भी कड़े संस्कार हैं भी, आत्मा के पिछले जन्मों के अनुसार कोई संस्कार इमर्ज होते हैं तो भी भविष्य सामने होने के कारण कि ये मुझे बनना है, तो संस्कारों पर हम सहज विधि से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, विजय हो जाती है। इसलिए स्वयं की विजय में निश्चय है। बाबा जिस तरह से अपना पार्ट बजा करके हम सबको संपूर्णता की ओर लिए जा रहे हैं, उसमें भी संपूर्ण निश्चय है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रश्न बाबा के पार्ट में भी हमें उठाने की जरूरत नहीं है। बाबा जानता है स्थापना का कार्य कैसे संपन्नता की ओर ले जाना है। बाबा के पाठ में परिवर्तन सदा ही हुआ है, होता रहा है। साकार अव्यक्त हुए, अव्यक्त रूप से इतने साल पालना दी, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई, इतने विश्व की सेवा की, और अभी वो तीसरा पार्ट और कोई प्रारंभ हो रहा है, वो पार्ट भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। वो साक्षात्कार हो, बच्चों को अनुभव हो, घर बैठे बाबा कहता अंत समय में बच्चों का हक है, जो आदि में स्थापना के समय हुआ वो अंत में भी होगा। तो बाबा के परिवर्तित पार्ट में भी कभी क्वेश्चन न उठे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पता नहीं कैसे हो रहा है। तो कई प्रकार के जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को भी हम फुल स्टॉप लगाएं। बाबा जैसे पार्ट बजाना चाहे, जो बजा रहा है, बहुत एक्यूरेट और नई दुनिया की स्थापना के लिए बहुत बड़ा बाबा का गुप्त राज है, राजयुक्त पार्ट है। तो इसलिए स्वयं में निश्चय है, बाबा के पार्ट में निश्चय है, बाबा की पढ़ाई में इतना संपूर्ण निश्चय है। बाबा कई बार, एक बार निश्चय की परीक्षा ली थी, बाबा ने कहा बच्चे कुछ समय में दीवार गिर जाएगी, ऐसे ही बाबा ने बोल दिया, सब बच्चे ऐसे देखते रहे, गिर जाएगी, समय पूरा हो गया, बाबा ये तो गिरी नहीं। बाबा ने कहा ये क्वेश्चन क्यों उठाया, उसमें भी कुछ राज था। बाबा ने जो बोला, बच्चों की परीक्षा ली, हिलना नहीं है, कभी भी डगमग नहीं होना है, जो कुछ बाबा ने कहा उसमें बहुत सारे अंदर बाहर के राज ज्ञान के समाये हुए हैं। आज मैं समझता हूँ बाबा के इस बात में अगर हम लोगों को भी निश्चय नहीं होता तो आज हमारी जीवन इतनी महान नहीं बन पाते। हम जब ज्ञान में आए 1960 में, मम्मा के द्वारा ज्ञान मिला परिवार में, उसके बाद सेवाएं शुरू हुई और 76 में विनाश हो जाएगा, बहुत पक्का एकदम। बाबा की मुरलियों में भी आता था, सब बच्चों को निश्चय हो गया। मेरे पिताजी को तो इतना निश्चय हो गया, कहते सब छोड़ो, बाबा के घर में हम समर्पित हो जाते हैं, क्या करेंगे। मुझे दादी कहती तुम छोटा है अभी पढ़ो, अभी जरूरत नहीं समर्पित होने की। कहा दादी क्या करेंगे, पढ़ के विनाश हो जाएगा। दादी हंसती है, कहती अरे बाबा कहता है विनाश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का समय है, तुम पढ़ाई करो। नहीं मन माना, फिर भी जिद करके समर्पित हो गए। अब वो समय था, बाबा ने वो समर्पित करने का चांस दिया, खुद पढ़ा रहा है। मुझे आज पता चला आप लोग टीचर के संबंध से बाबा को याद करेंगे, बाबा को पत्र लिखेंगे। सचमुच सबसे अच्छा टीचर का संबंध मैंने निभाया बाबा के साथ, आज ही अभी तक मुझे पढ़ाता है, मैं पढ़ता हूँ। आज 46-47 साल तो मुझे मधुबन में पढ़ते हुए हो गया, पढ़ ही रहा हूँ। और बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना ही है, सीखना ही है। वो पढ़ा रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमसे पूछते हैं आपको कितनी डिग्री मिली है, कितनी पढ़ाई की है। तो इतना पढ़ाया है, आज किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, किसी भी कॉलेज में चला जाऊं, ये नहीं लगता मैंने कॉलेज देखा ही नहीं है, उनको पढ़ा के आता हूं। पढ़ा रहा है ना, तो बाबा ने इतना पढ़ा दिया है, सारे तीनों लोकों का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, सारे चक्र का पूरा ज्ञान है, क्या नहीं पढ़ाया। इतनी ऊंची पढ़ाई सुप्रीम टीचर ने हम सबको पढ़ाई है, थोड़ा सा इसका मनन चिंतन करते हैं, सचमुच भाग्य का सितारा खुल जाता है। पढ़ा रहा है, पढ़ रहा हूँ, और उसी पढ़ाई के आधार से आज इतने ऊंचे ऊंचे स्टेज पर बाबा ने पहुंचाया है। अभी अभी मैं एक जगह भाषण करने गया था, 1.25 लाख की सभा थी, 1.25 लाख लोग सामने हों और स्टेज मिले तो नशा नहीं चलेगा, हमको कौन पढ़ाता है। तो ऐसे जब सभाएं मिलती हैं, भाषण करने को मिलता है, ज्ञान बाबा का ही देते हैं, हमारे पास क्या है, है तो ज्ञान बाबा का, लेकिन लोग तो समझते हैं भाई बड़े इनको पहुंचे हैं लोग, इनको इतनी बड़ी स्टेज मिली है। तो बाबा ने सचमुच बहुत कुछ दिया है, बुद्धि को इससे हम भरपूर रखें, बहुत अच्छी स्थिति बन जाती, अवस्था इतनी अचल अडोल बन जाती, कोई बातें माया की आती हैं बेपरवाह बादशाह, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा बाबा के आगे नहीं आई क्या, ब्रह्मा बाबा के आगे कौन सा पेपर नहीं आया। आजकल थोड़ी सी बातें लोक लाज कुल मर्यादा की आती, परिवार की आती, भक्ति छोड़ी होगी तो भक्तों के लिए उनके आगे बहुत बड़े पेपर आते हैं, हिल जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ब्रह्मा बाबा के आगे तो सब प्रकार के पेपर आए, लेकिन एक बल एक भरोसा, एक में अटूट निश्चय, ज्ञान का फाउंडेशन इतना मजबूत, कोई भी पेपर आया नथिंग न्यू, नई बात नहीं है, पार हो जाएंगे। तो इस फाउंडेशन को, ज्ञान के फाउंडेशन को खूब मजबूत करो। निश्चय के बाद है ज्ञान, जब ज्ञान कई आत्माएं स्नेह से आई, हम लोग भी स्नेह से ही आए, भोग खा करके आ गए, यज्ञ में समर्पित हो गए। लेकिन अगर ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत कर लिया है तो कोई भी बातें आती है ऐसा लगता है बाबा ने कितना ऊंचा ज्ञान दिया, नथिंग न्यू, नई बात है ही नहीं बच्चे। एक ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलेगा, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है इस ड्रामा में, हर एक के अपने संस्कार हैं, अपना स्वभाव है। जब इस स्थूल शरीर में, मैं कभी कभी बड़ा आश्चर्य से देखता हूं, जब ये साइंस वालों ने असाधन निकाला ना, ये आधार कार्ड वगैरह जब बनाते हैं अंगूठा लगा देते हैं, अंगूठा लगाते ही पूरा बायोडेटा उनके सामने आ जाता है। माना इतनी अरबों आत्माएं इस सृष्टि पर आ गई हैं, एक का अंगूठा भी दूसरे के अंगूठे से नहीं मिलता। कितनी वंडरफुल बात है, इसी से पहचान है। देश में जाओ, विदेश में जाओ, कहीं भी जाओ तो आपका बस यही लेंगे, थंप लगा दो। आत्माएं कितनी वैरायटी होंगी। अब हम एक से अपेक्षा रखें ये भी ये करे, ये भी ये करे, ये भी ये करे, करेगा क्या? ये तो हमारी अनजान की अज्ञानता की बात हो गई। जैसा मैं चाहूं ये मेरे से ऐसा करेंगे, भले सगे हों भाई बहन तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके संस्कार अपने हैं, उनके हिसाब किताब अपने हैं, उनका कर्म सिद्धांत अपना है। हाँ ठीक है, बाबा ने हमारे से अपेक्षाएं रखी हैं, ज्ञान दिया है, समझ दी है, हम उसके अनुसार चल रहे हैं, लेकिन बाबा भी जानता है अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो राजधानी कैसे बनेगी, सब नंबरवार ही रहेंगे। तो जो आत्माएं आज डिस्टर्ब होती हैं छोटी छोटी बात में, हलचल में आती हैं, उसका एक कारण होता है हमारी अपेक्षाएं बहुत हैं लोगों से, और जब वो पूरी नहीं होती हैं तो फट से गुस्सा आता है। क्यों कहता नहीं मानता? माता पिता होंगे, परिवार में प्रवृत्ति वाले होंगे, मैंने बच्चे को जन्म दिया, मैंने पढ़ाया, मैंने अच्छे संस्कार दिए, मैंने अच्छा संग दिया, मैंने इसके पीछे इतना मेहनत की, खर्चा किया, आज ये बड़ा हो गया, मेरा कहना नहीं मानता, डिस्टर्ब है, बीपी बढ़ा हुआ है, टेंशन है, परिवार वाले समझ रहे नहीं रहे कि बच्चे क्यों नहीं हमारी बात समझते हैं। उसके संस्कार अपने, उसका हिसाब किताब अपना, उसके कर्म अपने। हम सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता दिखाएं। बाबा ने हम सबको, बाबा कई बार साकार मुरली में कहते हैं, बच्चे मैं न दुख देता हूं न सुख देता हूं, सुख भी नहीं देता लेकिन सुखदाता कहलाता है। अगर दूंगा तो एक को दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा तो देना पड़ेगा, तो सबको एक जैसा देना पड़ेगा, मैं सबका बाप हूं। लेकिन मैं रास्ता बता देता हूं कि इस रास्ते पर अगर जाओगे तो सुख है, इस रास्ते पर जाओगे तो दुख है। कई मुरलियों में आप लोगों ने सुना होगा कि परिवार में जब हलचल होती है तो उसका कारण होता है कि हम सबको समान रास्ते पर चलाना चाहते हैं, जैसा मैं कहता हूं वैसा इनको करना चाहिए। जो बड़े होते हैं वो ये अधिकार रखते हैं और अधिकार के आधार से उनको चलाना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने एक बड़ी अच्छी युक्ति बताई है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जैसे बाबा ने हम सबको एक टिवाटे पर खड़ा किया, टिवाटे की आजकल पूजा होती है जहां तीन रास्ते मिलते हैं, वहां भी लोग तेल चढ़ा के आते हैं, ये टिवाटे पर खड़ा करो सबको। तीन रास्ते का एक बहुत सुंदर मार्ग है, एक तरफ है हमारे मुक्तिधाम का रास्ता, सबको जाना है, एक तरफ सुखधाम का रास्ता है और एक तरफ दुखधाम भी है, और उसके बीच में हम खड़े हैं रास्ते में। परिवार में भी कह सकते हो, बता सकते हो सबको, देखो ये मार्ग है सुखधाम की तरफ जाने का, जिसमें ये नियम है, ये मर्यादाएं हैं, ये शिक्षाएं हैं, ये धारणाएं हैं, इनको आप पालन करेंगे तो सुखधाम, सदा सुखी बन जाएंगे सदा के लिए, और अगर इनकी पालना नहीं कर सकते हो तो ये दुखधाम भी है, जाओ भले, रास्ता खुला हुआ है, दुखी दुख है जिसके अंदर, और अगर ये दोनों नहीं अपना सकते हो तो तीसरा है, परमात्मा को याद करो, सिर्फ कुछ नहीं करो, मुक्तिधाम में चले जाओगे। तो बाबा ने भी हम सबको इस तरह से रास्ता दिखाया है, किसी पर जबरदस्ती नहीं कि ये करना ही है, बता दिया ये करोगे तो ये पाओगे। अगर हम अपनी अचल अडोल एक रस अवस्था बनाना चाहते हैं तो हम अधिकार छोड़ दें, कर्तव्य पालन करें। अधिकार से अगर कोई बात आप कहोगे किसी को और वो पूरा नहीं होगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, स्थिति डगमग हो जाएगी। इसलिए ये ज्ञान समझ जो बाबा ने हम सबको दी है, कोई भी बात बोलने के पहले तौलो, पहले सोचो, फिर बोलो, फिर करो, सोच समझ करके करो। एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा होता है, पहले सोचो, सोचने के पहले सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। मैं इसको पढ़ता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। हमने कहा बाबा ने बड़ा ऊंचा हम लोगों को ज्ञान दिया, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे संकल्प चल रहे हैं, उसके पीछे भी जो संकल्प की प्रारब्ध है वो क्या होगी, उसको भी सोचो। तो संकल्प, बोल और कर्म, जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसके पहले ज्ञान युक्त होकर के एक सेकंड सोच ले इसका परिणाम क्या होगा। ज्ञान ये कहता है, ज्ञानी आत्मा की ये निशानी है। अगर कर लिया और फिर सोचता है तो गलत हो गया है, तो नहीं करना चाहिए था, ऐसे निकल गया, हो गया, अब क्या करें, फिर तो पश्चाताप ही है, उसको तो अज्ञानी कहा जाता। इसलिए ज्ञान का बल है और ज्ञान स्वरूप में आना चाहिए, सिर्फ सुनाने तक नहीं, लेक्चर देने तक नहीं, क्लास कराने तक नहीं, लेकिन एक जीवन दिखाई दे सचमुच इसने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है। ज्ञान समझ करके अपने संकल्पों को इस सेकंड में फुल स्टॉप लगा लेता है, जो बोलना चाहिए वही बोलता है, जो करना चाहिए वही करता है, कभी भी अधीनता नहीं दिखाई देती। अगर कोई आत्मा कर्म इंद्रिय के अधीन होकर के कोई संकल्प बोल और कर्म कर रही है, माना वो ज्ञानी नहीं है, सिर्फ तोते की तरह पढ़ाए ज्ञान को। इसलिए ज्ञानी आत्मा सोचती है, समझती है, फिर बोलती है, फिर करती है और उसमें सफलता प्राप्त कर लेती। तो ज्ञान का बल, ज्ञान का फाउंडेशन हम सबको बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है। निश्चय के साथ ज्ञान और ज्ञान के बाद चरित्र। जितना ज्ञान अंदर जीवन में समाता जाता उतना चरित्र उज्ज्वल बनता जाता है। और कहा जाता है चरित्र का बल सबसे बड़ा बल है। आज की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी गरीबी चरित्र की गरीबी है। सबको बताते हैं पैसे की नहीं है, धन संपत्ति की नहीं, सब कुछ है, भरा हुआ है, भारत भरपूर है, लेकिन चरित्र गिरा हुआ है। पैसा है तो व्यभिचार में जा रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, स्वार्थ वृत्तियों में जा रहा है, कई प्रकार से चरित्र की गिरावट हुई है, केवल एक पैसे के कारण नहीं हुई। कामविकार ने चरित्र की गिराया, क्रोध ने गिराया, लोभ ने गिराया, ये तीन तो महाशत्रु बन गए इंसान के। और इस चरित्रहीनता के कारण ही दुख है, अशांति है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। बाबा का बच्चा बनने के बाद कोई भी ऐसा कर्म न हो जो लोग उंगली उठाएं इसका चरित्र ठीक नहीं, कुछ भी करना पड़े। कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ये काम करना पड़ता है, मैं क्या करूं। श्रीमत लेते हैं, बड़ों से लेते हैं, बाबा से लेते हैं, लेकिन बाबा एक बहुत अच्छा शब्द देते हैं, बच्चे सेफ्टी फर्स्ट, अपनी सेफ्टी पहले रख करके फिर करना है तो भले करो, बाबा मना नहीं करता। लेकिन ऐसा कोई कर्म ना हो जो लोग उंगली उठाएं, ये ब्रह्मा कुमारियों में भी जाता है, वहां ज्ञान सुनता है, फिर भी ये करता है, बाबा के पूरे कार्य पर नजर आ जाते हैं लोगों की। इसलिए ध्यान रखना कि जो कर्म हम कर रहे हैं हमको देख सब कर रहे हैं, करेंगे, फॉलो करेंगे, कोई भी ऐसा कर्म न हो जो इतनी ऊंचे विद्यालय के ऊपर, इतनी ऊंची संस्था के ऊपर लोगों की आज जाए कि वहां जाने के बाद भी ऐसे करते हैं। तो चरित्र का बल, चाहे पवित्र पवित्र वृत्तियों का, दृष्टि का, अपने संकल्पों का, अपने बोल का, चाहे अपनी एक सत्कार देने की भावना का, बहुत अच्छा शब्द बाबा प्रयोग करते हैं, बच्चे सत्यवादी तो हो लेकिन सभ्यता के साथ सत्यता चाहिए। कई सच्चे हैं, सच्चाई का फाउंडेशन मजबूत है, जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, मैं सच्चा हूं ना, मैं नहीं रह सकता, नहीं रुक सकता, लेकिन बाबा इसके साथ साथ ये शब्द यूज करते, बच्चे सत्यता है लेकिन सभ्यता भी चाहिए। जो बोलना है बोलो, लेकिन समय देखो, परिस्थिति देखो, स्थान देखो, व्यक्ति की मूड देखो, फिर बात करो। सच्चाई कहो जरूर, लेकिन देख करके, स्थान देख करके। इसलिए सत्यता का फाउंडेशन चरित्र के साथ साथ आवश्यक है, हम अपने सत्य मार्ग पर टिके रहें। लेकिन सबसे बड़ी सत्यता है अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। जो आज असत्यता है दुनिया के अंदर वो है देहाभिमान की, अपने को देह समझ रहा व्यक्ति, देहाभिमान के कारण मेरा अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। अगर मैं आत्मा सत्य हूं तो अपने सत्य स्वधर्म शांति प्रेम आनंद उसमें स्थित रहूं। दादी हमेशा एक शब्द यूज करती हैं, जानकी दादी कहती हैं, तीन गोलियां रोज खा लो, सब बीमारियों से दूर हो जाएंगे। धीरज, प्रेम और शांति। धीरज, प्रेम और शांति की तीन गोलियां मैं रोज खाती हूं, दादी एक शब्द यूज करते हैं। हम सभी भी इसको अपना करके, सत्यता है लेकिन अधैर्यता नहीं चाहिए। सत्यता की बहुत बड़ी शक्ति है और बाबा सत्य स्वरूप में रह के भी, इतनी अथॉरिटी होते भी, सबका सुना। ये नहीं कहा मैं सच्चा हूं तो सामना करूं, सुना। सत्य समय पर प्रसिद्ध होता है। सत्य के सूर्य को बादल ढक नहीं सकते। अगर सत्य है तो सत्यता प्रसिद्ध होगी, लेकिन मुझे चिद्ध करके सिद्ध नहीं करना। तो ये बाबा के जो ऐसे वंडरफुल शब्द हैं, इनको थोड़ा सा हम चिंतन में लाएं और सत्यता की अथॉरिटी बने, सत्य स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करें। तो सत्यता ही शांति में, सभ्यता में, प्रेम में, धैर्यता में, इन गुणों के साथ सत्यता हमारी दिखाई देनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ा फाउंडेशन तो हमारी प्योरिटी ही है, पवित्रता, जो आज बाबा ने कहा है बहुत बड़ा मैनर्स। इससे बड़ा मैनर्स और दुनिया के अंदर कोई नहीं है। कितने मैनर्स सिखाए जाएं बात करने के, लेकिन जहां पवित्रता है वो सबसे बड़ा मैनर्स। आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक व्यवहार है, बोल चाल है, न लगाव है, न झुकाव है, न प्रभाव है, न दबाव है। जो पवित्र आत्माएं हैं वो सब बातों से मुक्त रहती है, किसी के लगाव झुकाव में नहीं आती। कोई कितना भी अच्छा हो उसके ऊपर इतना फिदा नहीं हो जाती जो वही अच्छा लगे, उसी से बात करूं, उसी से मिलूं, उसी को सब प्रकार का चांस दूं। वास्तव में प्योरिटी की स्टेज बहुत ऊंची स्टेज है, और उस ऊंची स्टेज को समझ करके सबके साथ समान व्यवहार हो, सबको समदृष्टि से देखा जाए, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से वैर, ऐसी स्टेज बने जो हम किसी से नफरत और घृणा भी न करें और किसी से प्रभावित भी न हो जाएं, तब कहेंगे प्योरिटी की स्टेज को इसने अपनाया है। बाबा तो कितनी गहरी प्योरिटी की परिभाषा सुनाता कि बच्ची अगर कोई भी बात में दुख की लैस भी आती है तो भी इम्प्योरिटी है, क्योंकि प्योरिटी सुख शांति की जननी है। जिसने इस पवित्रता को अच्छी तरह से समझा और अपनाया है उसके पास दुख और अशांति आ ही नहीं सकता। जब इतनी गहरी स्टेज है तो इसको हमने कहां तक अपनाया है, और इस फाउंडेशन को जिसने मजबूत कर लिया, कोई भी बातें आ जाएं हिलेगा नहीं, अचल लडोल स्थिर एक रस रहेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी शक्ति है, और इसी शक्ति के आधार से आज हमारा विद्यालय इतना आगे बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ी शान है इस विद्यालय की, और वो उसी अथॉरिटी से कहता है कि चाहे हम प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे हम समर्पित हैं, चाहे हम कुमार कुमारियां हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन ये हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला नियम और फाउंडेशन है। इसको लूज नहीं करना है, किसी भी हालत में लूज न हो। इसके लिए बाबा कहता मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। इसमें जरा भी गफलत न हो। माया इसी को ही बिछाड़ती है, इसी में ही पेपर लेती है, इसी में हिलाती है। और जहां जिस सेवा केंद्र पर इस बात पर फुल अटेंशन नहीं है, वहां अनेक प्रकार के रोज विघ्न हैं। विघ्नों का कारण है इम्प्योरिटी का जरा भी अंश। इसलिए इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना, सभी भाई बहने ध्यान देना कि हमारा एक रूहानियत का अव्यक्ति प्रवाह वाला वायुमंडल बन जाए, चाहे माया है, चाहे इविल स्पिरिट्स हैं, चाहे कोई मायावी व्यक्ति हैं, कोई भी वार नहीं कर सकता, कोई भी हिला नहीं सकता। न संस्था को हिला सकता है, न व्यक्ति को हिला सकता है, न हमारे जीवन को हिला सकता है। इसलिए अगर हम सभी इस बात को मजबूत कर ले कि हमारे जीवन में इम्प्योरिटी नाम निशान से भी समाप्त हो, उसके लिए जो भी करना पड़े, जो विधियां अपनानी पड़े, हम उसी लिए तपस्या करते, उसी लिए भट्टी करते। सार क्या है सारी तपस्या का, भट्टी का एसेंस क्या है? आत्मा की संपूर्णता को, सत्व प्रधानता को बढ़ाना, उस स्टेज को प्राप्त करना जिस स्टेज से आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई थी। अब उसके बीच में जो मैल आई है, विकारों की लिप्त छिप्त हुए हैं हम सभी, वो सब समाप्त हो जाए, उसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं, योग भट्टियां कर रहे हैं, ज्ञान का चिंतन मनन कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, उन सब के पीछे मूल लक्ष्य को नहीं बोलना। तो अगर ये फाउंडेशन हमारा मजबूत है तो मैं समझता हूँ कुछ भी हो जाए हिलेंगे डुलेंगे नहीं, अचल अडोल एक रस रहेंगे। ये सत्यता और प्योरिटी का बहुत गहरा फाउंडेशन हम सबको मजबूत करना है। और हर प्रॉब्लम का समाधान योग है। किसी से भी कोई वर्णन चिंतन करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने यज्ञ में देखा है कोई भी बातें आई, बड़े बड़े पेपर सामने आए हैं, हमारी दादी ने केवल एक ही सहारा लिया, एक ही सहारा, योग भट्टी, योग को जमा करो। 10-12-15 भाई जो इंटरेस्टेड थे, कोई भी बात होती थी दादी रात को कहती थी आज हम सब 1:30 बजे उठेंगे। प्रकाश, मेरी दादी की मैं बात कर रहा हूं। इस पांडव भवन में जब तक वो रही, तो उसके बाद शांतिवन बना, विस्तार हुआ, वो आगे बढ़ गई बात। लेकिन 2003 के पहले की बात मैं यहां कर रहा हूं आपके आगे। दादी जी हर शनिवार को 1:30-2 बजे हम लोगों को उठाती थी, आप सब उठो हम सब बैठ करके योग करेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक योग किया। कोई ये नहीं बताती थी आज ये प्रॉब्लम है, आज इनकम टैक्स की बात आ गई, आज ये बात आ गई, आज यहां पर विघ्न है, आज ही सेंटर पर है। कोई भी विघ्न हो, विघ्नों का वर्णन चिंतन नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक तपस्या करनी है। दादी यहां आके बैठ जाती थी, इसी हाल में हम लोग योग करते थे। ऐसे गद्दियां लगा देते थे, सोफे वगैरह तो बाद में बने, गद्दियों पर बैठ जाते थे और बस 3 घंटे तक, बीच बीच में दादी 2 मिनट बोलती थी, फिर योग करते थे। वो विघ्न ऐसे ही खत्म हो जाता, कभी भी वर्णन चिंतन नहीं किया, क्योंकि कोई भी विघ्न का अगर वर्णन कर दिया तो विघ्न बढ़ जाएगा, संकल्प में सोच लिया तो भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए उसको समाप्त करने की विधि है केवल योग, योग का बल, योग का फाउंडेशन। एक बार एक जगह पर, आजकल तांत्रिक विद्याएं बहुत चलती हैं, दुनिया वाले इसको कितना सहारा बना रहे हैं, और सचमुच जो इसको सहारा बनाते हैं या इसे छुटकारा पाने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते और फंस जाते हैं। ये बहुत बहुत क्या कहें, खराब विद्या है इस दुनिया की। इस समय ब्राह्मणों को बहुत ध्यान देना चाहिए, इस चक्कर में कभी भी नहीं जाना, और चले गए तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा पार होने की वजह। एक बार किसी के माता के फोटो के ऊपर कोई तांत्रिक से ईर्ष्या के कारण फोटो के ऊपर अगरबत्ती लगाता था, और जहां पर फोटो पर अगरबत्ती लगाता था वो जलती थी, वहां पर उसका शरीर जलने लगता था। वो आ गई दादी के पास, दादी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे तो बाबा के सिवा कोई पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, आ गई ना, तुम आ गई बाबा के घर में, चलो ओम शांति भवन के बाबा के कमरे में। उसका परिवार था, उसका पति भी था, बच्चे भी थे और कई थे, सबको कहा सब रात भर योग करेंगे। पूरी नाइट दादी ने खुद जगह देखे, कुछ भाइयों को भी कहा कि आप लोग भी योग करो इस आत्मा के प्रति। पूरी नाइट योग हुआ और धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम उसकी खत्म हो गई। और जो ऐसा करते हैं उनका रिटर्न पर बहुत बुरा असर होता है। अगर यहां को नहीं कुछ हुआ तो उनको रिटर्न में बहुत दुख होता है, परेशानी होती। तो दादी ने कहा हमको कोई को परेशान नहीं करना है, लेकिन हम उनके वार को काट सकते हैं, हमारे पास शक्ति है और वो है योग की शक्ति। इसलिए योग बल जमा करो और हर स्थान पर, हर सेवा स्थान पर या आपके अपने घरों में अचल अडोल एक रस इस कलयुग के वातावरण बनाना अपनी स्थिति बहुत जरूरी है। योग का किला, किला मजबूत है, शत्रु आ ही नहीं सकता। अगर शत्रु किसी भी रूप से आता है, किसी भी संस्कार से, किसी भी विकार से, किसी भी तरह से, माना हमारे किले में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खिड़की दरवाजा खुला हुआ है जहां से घुस रहा है। इसलिए योग का किला माना शुद्ध संकल्पों की प्योरिटी की एक बहुत सुंदर बाउंड्री बने। बाबा एक बार कहा था मुरली के अंदर, उस बाउंड्री पर आप बहुत पवित्र किरणों की करंट डाल दो। जैसे शत्रुओं से रक्षा करने के लिए आपने शायद बॉर्डर्स देखे होंगे, यहां पर भी एक बॉर्डर है नजदीक में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर बने हुए हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे लोहे के बॉर्डर बनाए हैं। तो तो एक बार हम लोग राखी पर गए उनकी सेवा के लिए, बीएसएफ के जवानों की सेवा के लिए, तो मुझे कहते आपको बॉर्डर घुमा के लाता हूं। तो बॉर्डर पर लेके गए घुमाने के लिए, कहते इससे 15 फुट दूर रहना, नजदीक नहीं जाना, पैदल ही जा रहे थे हम लोग। हमने क्यों 15 फुट दूर रहे, क्या है? कहता इसमें बीच बीच में हम लोग करंट छोड़ते हैं, अचानक छोड़ते हैं, ताकि कोई भी अगर नजदीक आएगा तो वो चिपकेगा नहीं, उसको करंट उसको दूर फेंक देगी। सुरक्षा के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए बाउंड्री को कितना मजबूत किया हुआ है और करंट छोड़ी हुई है, और हम लोग अलबेले हैं, हमारे ऊपर तो चारों तरफ से माया दुश्मन घूम रही है, न करंट छोड़ते हैं न बाउंड्री बनाते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं, मायावी चीजें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं माया जीत बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? वो तो चारों तरफ से घूम रही है हमारे ऊपर, पहरा दे रही है। थोड़ा सा तो इस पर अटेंशन दो, जब हम इस शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए बैठे हैं तो उसको घुसने का चांस क्यों दे रहे हैं? जहां से भी घुसना चाहती है उसकी बाउंड्री को टाइट करो, और टाइट करके योग की करंट छोड़ो, उस पर प्योरिटी की करंट छोड़ो। आए भी अगर संकल्प तो दूर से भाग जाए। तो हम सबको इस किले को मजबूत करना है, अचल अडोल एक रस स्थिति स्वतः बन जाएगी अगर ये सातों बातें ज्ञान की, चरित्र की, सत्यता की, पवित्रता की, निश्चय की, योग की, इन सातों बातों के फाउंडेशन को मजबूत कर लिया तो मैं समझता हूं माया जीत जगत जीत बने हुए हैं, बन ही जाएंगे, और स्थिति एक रस अचल अडोल बन जाती है। तो आप सभी ऐसी स्थिति बना करके, ऐसी अवस्था बना करके यहां से जाना, कोई भी कमी कमजोरियां हैं बाबा के घर में अगर नहीं समाप्त किया तो कब करेंगे? यहां आए हो बाबा के घर में, एकांत में बैठ करके अपना दर्पण देखो, अंदर जा करके अपने को झांको, लिखो, बाबा की भंडारी में डाल दो, स्वाहा, खत्म। स्थिति अचल अडोल बन जाएगी, अवस्था कोई हिला ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए लोग क्या करेंगे? अगर हम कमजोर हैं तो सब आएंगे, और हम शक्तिशाली हैं तो सब भाग जाएंगे। ठीक है, समय हो गया है, हम स्टॉप करते हैं। ओम शांति। चलो 3 मिनट के लिए शरीर रूपी गुफा में आत्मिक स्वरूप का अनुभव करो। इस भ्रकुटी के बीच में मैं एक मणि के रूप में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, और इस मणि के ऊपर ज्ञान सूर्य बाबा की सप्त गुणों की किरणें आ रही हैं, जिनसे मैं संपन्न होकर सारे ग्लोब को शक्तियों की सर्च लाइट दे रहा हूँ।
जादू फेरा है जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है।
आदरणीय राजू भाई जी ने आज हम सबका फाउंडेशन पक्का कराया, उसमें 7 फुट गहरी नींव खोद दी है, 7 बातें बता करके। तो हम आभार मानते हैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी नींव इतनी मजबूत रहेगी कि माया का कोई भी तूफान इसे गिरा नहीं सकेगा।